اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر نمبر 34 ہم پڑھ رہے ہیں، پیج نمبر ہم نے 291 پہ پڑھنا ہے. یہ جو زمانیت اور مکانیت کا تذکرہ آتا رہا کہ زمانیت کسے کہتے ہیں، تو ہم اپنے زمانے کو وہاں فٹ کر کے سوچتے رہے، تو بعد میں پتا چلا کہ یہ ہماری سوچ اتنی بھی درست نہیں ہے. اصل میں زمانیت کا جو قرآنی مفہوم ہے یا وہ مفہوم جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اگر ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی، حال، مستقبل کی کلاسیفیکیشن ختم کر کے اس کو زمانے حقیقی، زمانے غیر متواتر اور زمانے متواتر کو سمجھنا ہے اور ذہن کو اس کا عادی کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ہم ماضی، مستقبل اور حال میں رہنے کے اس میں عادی ہوئے ہیں. کیونکہ شروع سے یہی بتایا، کل تم نے یہ کیا تھا تو پرسوں تم یہ کرو گے، یہ گا گے گی یا تھا تھے تھی. بس اسی چکر نے سارا نظام ہمارا الٹا کیا ہوا ہے. تو اب جو بات روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ تو اتنی تو سمجھ آ گئی کہ تین چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک ذہن ہے اور ایک روح ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ان کو چار چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. وہ چار چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا کنیکٹڈ ہیں وہ ہے وہما، خیال، تصور اور احساس. تو یہ تین چیزیں یعنی جسم، ذہن اور روح، اور یہ چار چیزیں وہما، خیال، تصور اور احساس، اسی کو سمجھاتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے 33 چیپٹر پورے پڑھ لیے اور 34واں ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ٹائم کے حوالے سے درست کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ وقت کیا چیز ہے، وقت اصل میں کسے کہتے ہیں، وقت کیا ہے، اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے. تو کل ہم نے جو پڑھا کہ اب ہم یوں کہیں گے کہ شعور کے تغیر سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور ہے. یعنی شعور میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یعنی کوئی اطلاع آ رہی ہے تو ظاہر ہے شعور کا پوری کیمسٹری بدل جاتی ہے. آپ اچھے بھلے خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک دم ساری کیفیات پہ اوس پڑ جاتی ہے یا بدل جاتی ہیں، یا کسی پریشانی کے عالم میں اچانک خبر آتی ہے کہ جی وہ آپ کا تو لاٹری نکل آئی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شعور کے تغیرات ہیں ان سے واقف ہونے کا عمل ہی شعور ہے. غور کریں، یعنی شعور کی ہستی اس لمحے کے اندر بند ہوتی ہے جس لمحے کے اندر ہر آن تغیر ہے. یعنی شعور کی ہستی ہے، شعور بھی ایک ہستی ہے، علم بھی ایک ہستی ہے، وہ لمحہ بھی ایک ہستی ہے، اور شعور کی ہستی اس لمحے کے اندر بند ہوتی ہے جس لمحے کے اندر ہر آن تغیر ہے. یعنی لاشعور کی ہستی اس لمحے میں بند ہے جہاں تغیر نہیں ہے، اور شعور کی ہستی اس لمحے میں جہاں ہر آن تغیر ہے. اب قرآن پاک میں اس تغیر کا نام آفاق رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور غیر متغیر لمحے کا نام زمانے غیر متواتر ہے. قرآن پاک میں زمانے غیر متواتر کو ہی انفس کہا گیا ہے. زمانے متواتر کو آفاق، یعنی متغیر چیز کو آفاق، باہر سب کچھ چونکہ ایور چینجنگ ہے، لیکن اس ہر چیز کا باطن اپنے اندر، اپنے انفس میں इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। एक वेरिएबल होता है, एक इनवेरिएबल होता है। जब हम नूर के लम्हे का तज़करा करते हैं तो दरअसल इंसान की रूह का तज़करा करते हैं। अब कोई शक व शुबा रहा आपको कि नूर का लम्हा अलग है, रोशनी के लम्हात अलग हैं, तो इसी तरह रंगों के लम्हात भी अलग हैं और मादे के लम्हात भी अलग हैं, क्योंकि यही चार दर्जे बनते हैं ना, कि तजल्ली से नूर बना, नूर से रोशनी बनी, रोशनी से रंग बने, रंगों से आगे मादा बना। तो ये नूर के लम्हे का तज़करा करते हैं, यानी व्हेन वी आर रेफरिंग टू नूर। नूर मैंने अर्ज किया था कि ख्याल की सतह को कहते हैं, तो दरअसल इंसान की रूह का तज़करा करते हैं। यानी ख्याल जो हैं ये असल में इन्हीं का बहाव जिंदगी है और यही रूह का काम कर रहे हैं, इन्हीं का रूह कहते हैं। और तो जब हम नस्मा का तज़करा करते हैं तो दरअसल हम इंसानी जहन का तज़करा करते हैं, यानी नस्मा जहन इंसानी। अब नस्मा क्या बताया था, जाहिर है ख्याल से नीचे क्या चीज है, तसव्वुरात, जहां पे हमारे खदो खाल बनते हैं ख्याल में, तो इसी को जहन कहते हैं, इसी को नस्मा कहते हैं। नस्मा का तज़करा करते हैं तो इंसानी जहन का तज़करा करते हैं। अब भी अगर किसी को ये शुबा रहे कि पता नहीं ये मकसूद साहब अपने पास से कुछ बोल रहे हैं, नहीं भाई, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे, ये सारी बातें हैं हजूर मुर्शिद करीम ने और हजूर कलंदर बाब औलिया ने वाशगाफ कर दी, खोल के बता दी। जैद एक फर्द है। अगर सवाल किया जाए कि जैद कौन है, तो ये कहा जाएगा कि जैद फलां का बेटा है, अकलमंद है, बुर्दबार है, वगैरह वगैरह। यानी जैद जिन सिफात का मजमुआ है, ये सिफात जैद के औसाफ हैं। यानी जब हम किसी शख्स का तस्करा करते हैं तो हमारे जहन में उसके हिज्जे नहीं आते, उसके औसाफ आते हैं। जब हम जैद का तस्करा करते हैं तो गोश्त पोस्ट और हड्डियों के पिंजर पर बनी इमारत का तस्करा नहीं करते, बल्कि जैद को उसके आमाल की मुनासिबत से जानते हैं और आमाल सिफात का या उसके औसाफ का इजहार का नाम है। जबकि जैद की सिफात हमारे सामने नहीं है, क्योंकि आमाल सामने होते हैं लेकिन उनकी कॉज यानी सिफात जो है वो पीछे होती हैं, यानी वो उसके बातिन में होती हैं। लेकिन जैद का जिस्मानी निजाम हमारे सामने होता है। अब अगर हम जैद की जिंदगी का तजजिया करें तो ये कहेंगे कि जैद उन सिफात की फिल्म है जिन सिफात का तज़करा किया गया। ये जो हम आमतौर पे एक जुमला बोलते हैं ना कि जैद मतलब फलां साहब जो है वो बड़ी फिल्म है, पूरी फिल्म है, ये कराची में अक्सर ये जुमला बोला जाता है दोस्तों में, तो जैद असल में हर आदमी अपनी सिफात की एक फिल्म है कि वो सिफात किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। इस डिस्प्ले का नाम फिल्म है। अब अगर हम जैद की जिंदगी का तजजिया करें तो ये कहेंगे कि जैद उन सिफात की फिल्म है जिन सिफात का तस्करा किया गया, यानी बुर्दबार है या अकलमंद है या उसकी जो भी खासियतें हैं, और जैद की सिफात उसकी फिल्म है। इस फिल्म का नाम अगर आप देखें तो वराए शऊर यानी लाशऊर और नूरे मुरक्कब रखा जाएगा। अब देखें यहाँ नस्मा मुरक्कब से उठकर बात चली गई नस्मा मुफरद से ऊपर नूरे मुरक्कब में, तो जैद की हस्ती को इस मिसाल से समझें। जैद को सूरज का ख्याल आया, अब समझा किसको रहे हैं? जैद को। जैद को सूरज का ख्याल आया, यानी जैद के जहन ने गैर शौरी तौर पर सूरज के निजाम का अहाता कर लिया। यानी सूरज का ख्याल आना सूरज के निजाम का अहाता कर लिया, लेकिन वो गैर शौरी है। गोया जैद के लाशऊर के बिल मुकाबिल, यानी उसके सामने, लाशऊर के सामने सूरज का मुकम्मल निजाम एक तस्वीरी शक्ल में मौजूद हो गया। जो ही किसी चीज का ख्याल आया वो पूरा निजाम पूरा सिस्टम हमारे लाशऊर के सामने किताब की तरह या एक बड़ी स्क्रीन की तरह वाजे हो गया, लेकिन हम फारग ही नहीं है कि उसे देखें तो कहां से नजर आ जाएगा वो। इसलिए तवज्जो को फोकस करना जरूरी होता है। अब उस तस्वीरी फिल्म में सूरज के निजाम की तफसीलात, यानी जमाने गैर मतवातर का एक लम्हा है, वो जमाने गैर मतवातर का पूरा लम्हा उसके जहन में एक पूरी स्क्रीन की तरह पूरे निजामे शमसी को अहाता किए हुए है। अब कानून ये बना कि अगर लम्हे की तफसीलात, अगर लम्हे की तफसीलात या जैद से मुतालिक उसके औसाफ की फिल्म और फिल्म के अंदर आसारो अहवाल को लपेट दिया जाए, तो ये सब जैद की जिंदगी का एक लम्हा बनेगा। प्रोजेक्टर पे चलने वाली फिल्म की मिसाल मैं अर्ज कर चुका हूं, दोबारा सुन लीजिए कि रोशनी के सामने से गुजरने वाला जो तस्वीर का फ्रेम है वो है लम्हा हाजिर, लेकिन जो अभी तस्वीर गुजरनी है वो है मुस्तकबिल, और जो गुजर चुकी है वो है माजी। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। अब रूहानी बंदा क्या देख रहा है कि ये पूरी फिल्म असल में एक रील के डब्बे में बंद है। वो डिब्बा जो है जिसमें ये पूरी फिल्म बंद है उसमें वो सारे लम्हात यानी सारे फ्रेम्स सारी तस्वीरें एक यकजा सूरत में मौजूद हैं। यानी दोबारा सुन लीजिए कि अगर लम्हे की तफसीलात या जैद के मुतालिक उसके औसाफ की फिल्म और फिल्म के अंदर आसार व अहवाल को लपेट दिया जाए, देखें लफ्ज है लपेट दिया जाए, तो ये सब जैद की जिंदगी का एक लम्हा बना। अब ये लम्हा जमाने गैर मतवातर का लम्हा है। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक कायनात में कोई शय एक रुख पर तख्लीक नहीं हुई। कायनात में मौजूद हर शय दो रुखों का मुरक्कब है, दो रुखों से मुरक्कब है। इसी तरह लम्हे के भी दो रुख या दो सतहें हैं। अब लम्हे की एक सतह हवास के बिल मुकाबिल है, जिसको आलम फितरत कहते हैं, और जाहिर है कि दूसरी सतह लाशऊर के बिल मुकाबिल है जिसको रूह कहते हैं और उसको आलम गैब कहते हैं। तो लम्हे की एक सतह जो हवास के सामने है, एक जहन के सामने है, लाशऊर के सामने है, और दूसरी सतह हवास के सामने, और जो हवास के सामने है सतह इसी को आलम फितरत कहते हैं। अब इंसान अपने हवास से काम लेने के बजाय मखबूतुल हवास हो जाए तो क्या इंसान कहलाने का मुस्तक है? तो ऐसे ही बेशुमार लम्हात का मजमूई नाम जैद है। ये वही जैद है जिसको हवास देखते, छूते और जानते हैं। जैद बेशुमार लम्हात की लिपटी हुई सरबस्ता फिल्म है। सरबस्ता, बस्ता कहते हैं जिसमें किताबें बांधी जाती थी, कपड़े का वो टुकड़ा होता था चकोर सा, तो उसमें किताबें ऊपर तले रख के बांधा जाता था, तो उसे बस्ता कहते थे। या वो सैचल या थैला जिसको आप स्कूल बैग भी कहते हैं, उसको कहते हैं बस्ता। तो सर बस्ता, सर जिसका ढांका गया हो, यानी लिपटी हुई सर बस्ता, डब्बे में बंद फिल्म, मैंने पहले लफ्ज कहा। अब यहां लिपटी हुई सर बस्ता फिल्म, पता नहीं बस्ता किसे कह रहे हैं, नहीं मतलब है कि एक बंद फिल्म है। बल्फाज दीगर जैद जमाने मतवातर की हयात का एक उनवान है। ये लफ्ज जैद जो है ये जैद की जिंदगी के पूरी कहानी, पूरी फिल्म का टाइटल है। जैसे आप टाइटैनिक फिल्म देखते हैं तो पूरी फिल्म टाइटैनिक जो है वो लव्स टाइटैनिक उस पूरी फिल्म की कहानी को अपने अंदर समोए हुए है। इसी तरह जब हम किसी बंदे का नाम लेते हैं तो बंदा, उसका नाम जो है वो उसकी पूरी जिंदगी का उन्वान है। मसलन आपने कहा मकसूद, तो ये मकसूद जो है ये अपनी पूरी जिंदगी का, जो मेरी जिंदगी की पूरी फिल्म बनी उसका टाइटल है मकसूद। या जैसे किसी का भी आप नाम लें, अब हजूर मुर्शिद करीम का नाम लें, तो असल में वो जो तमाम सारी जिंदगी उनकी गुजरी, उस सारी जिंदगी, उनके सारे कमालात, उनके सारे औसाफ, उस पूरी फिल्म का टाइटल हो गया ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी मुद्दज़िल्ला हुलाली। ठीक हो गया। अब इसी जमाने मतवातर के उनवान की तफसील वो कहां मिलेगी? वो जमाने गैर मतवातर का वो यूनिट है जो जैद की माहियत है, यानी जिससे जैद बना हुआ है, जो जैद की माहियत है, यानी जमाने गैर मतवातर में उसकी पूरी डिटेल्स हैं। माहियत से मुराद ऐसा नूर या रोशनी जो यूनिट के अज्जा की तस्वीरी फिल्म है। नूर या ऐसी रोशनी जो यूनिट के अज्जा, यूनिट वो लाशौर के अज्जा, उसके अंदर पार्ट्स हैं, जैसे हमारा सुबह शाम, जवानी बचपन लड़कपन, ये सारे अज्जा हैं, इनकी तस्वीरी फिल्म है। अब उस तस्वीरी फिल्म में किसी यूनिट का हर वहम, हर ख्याल, हर एहसास रिकॉर्ड है। बताइए कहां लिखा है कि आमाल पहले से तय हैं? आंसर इज नो। यानी इस तस्वीरी फिल्म में हर वहम, यानी हर वाहमा, यानी हर इत्तला, फिर वो कैसे ख्याल की शक्ल, कितनी उसने ख्याल की शक्ल इख्तियार की और कितनी इत्तला रद्द हो गई, वो रेशो हजूर कलंदर बाब औलिया ने खत में बयान की है ना कि 999 तलात तो हम रद्द कर देते हैं और एक को, यानी उसको ख्याल में आने देते हैं, फिर उस एक को तोड़कर मरोड़कर और मसख करके, यानी आगे फिर हमारे तसव्वुरात उससे क्या खिलवाड़ करते हैं, फिर हमारे एहसासात हमें कितना धोखा देते हैं, और फिर उसके नतीजे में बनने वाला सांचा जो है वो क्या चक्कर चलाता है, वो सारे की सारी कहानी आप गौर करेंगे तो खुल जाएगी। यानी इस तस्वीरी फिल्म में किसी यूनिट का हर वहम, हर ख्याल और हर एहसास रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड की डेफिनेशन कुरान से कैसे टैली हो रही है? अल्लाह ताला फरमाते हैं आप क्या समझे इलीन यानी आला जिंदगी क्या है, और आप क्या समझे सिज्जीन यानी असफल जिंदगी क्या है। ये एक लिखी हुई किताब है। इलीन आला जिंदगी यानी जिंदगी का वो लेवल, हयात का वो कदम जो मरने के बाद भी आपको ऊपर यानी एग्जॉल्टेशन में रखता है, खुशी में रखता है, सरूर में रखता है, कैफ में रखता है। और दूसरा सिजीन, सिजन कहते हैं कैदखाने को, घुटन को, जीक लफ्ज है एक अरबी में तंगी को, घुटन तंगी उसको सिजीन का है। ये जो इंसान गुस्सा करता है, ये जो परेशान होता है, ये जो पछतावे में चला जाता है, ये जो गिल्ट का एहसास होता है, ये बंदे को ज़हनी घुटन का शिकार कर देता है। तो चाहे आप खुश रहें तब भी रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे आप खफा रहें परेशान रहें वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों लिखी हुई किताब है, किताबुल मरकूम। अब इंसानी जिंदगी में दो रुख बरसरे अमल है। एक रुख जिंदगी का आला रुख है, और दूसरा रुख जिंदगी का असफल रुख है। अब जमाने मतवातर का लम्हा जिस्म है, और जमाने गैर मतवातर का लम्हा उस जिस्म के एहसासात के शवाहिद की तफसीली फिल्म है। यानी ये जमाने मतवातर का लम्हा जिस्म है, जिस्मानियत है, मकानियत है, लेकिन जमाने गैर मतवातर यानी नॉन सीरियल टाइम जिसको ख्वाब के हवास हम कहते हैं, ख्वाब का लम्हा कहते हैं, वो असल में क्या है कि जिस्म के एहसासात के शवाहिद यानी एहसासात के शवाहिद उनके सबूत, या एहसास को जिस्म महसूस करता है तो उसके वो शाहिद हो गया, यानी उसके शवाहिद मिल गए कि इसको ये एहसास हो रहा है। अब एक बंदा डर कहता है मैं डरा, डर एक एहसास है। अब जिस्म पे उसके एहसासात, इस एहसास के शवाहिद कैसे मिलते हैं कि उसका रंग पीला पड़ गया, आंखें ऐसे घबराई हुई इधर उधर देख रहा है। तो ये जो शवाहिद हैं, फिर इनकी तफसीली फिल्म है। कौन? जमाने गैर मतवातर का लम्हा। जमाने गैर मतवातर का लम्हा हर वक्त हमारी रूह के बिल मुकाबिल रहता है, लेकिन हमारा जहन इस तरफ नहीं जाता। यही वजह है कि हमारे लिए गैब है। यानी जमाने गैर मतवातर का लम्हा हर वक्त हमारी रूह के मुकाबिल है, हमारे लाशऊर के सामने है, लेकिन हमारा जहन उस तरफ नहीं जाता कि हम अपने ख्यालों को देखना सीख लें। अब कानून यह है कि जब हम किसी शय को देखते हैं तो गैर मतवातर लम्हा यानी नॉन सीरियल टाइम जो है, ये दरमियानी फासले को हमारी लाइल्मी में इस तरह नाप लेता है कि शय की रोशनी यानी शय का तसव्वुर जहन से हवा भर अलग नहीं रहता और ना ही जहन की सतह में दाखिल होता है। यही वजह है कि हम शय को देख सकते हैं, ना वो उससे अलग होता है ना उसके अंदर दाखिल होता है। शय जहन से हवा भर अलग रहे या जहन शय से हवा भर यानी दरमियान में बिल्कुल कोई गुंजाइश न रहे, अलग रहे या हवा भर शय में दाखिल हो जाए, तो हम शय को नहीं देख सकते। यानी ये फासला जरूरी है, चाहे वो हवा भर फासला हो। तो शय की रोशनी ना तो जहन से हवा भर अलग रहती है, ना जहन में दाखिल होती है। अगर शय की रोशनी जहन में दाखिल हो जाए तो गैर मतवातर जमान, तो गैर मतवातर जमान गैर मतवातर नहीं रहेगा। और अगर शय की रोशनी हवा भर शय के अंदर दाखिल हो जाए तो जमाने मतवातर नहीं रहेगा और शय का वजूद जेरे बहस नहीं आएगा। यह है राज। फासला होगा तो शय जेरे बहस रहेगी, नहीं होगा तो नहीं रह सकती। अब इसकी मिसाल ख्वाब देखना है। ख्वाब देखने वाला 10 साल बाद के वाक्यात अचानक देखने लगता है, हालांकि 10 साल के दरमियानी वक्फे उसके सामने से नहीं गुजरे, जबकि जमाने मतवातर में 10 साल बाद के वाक्यात को देखने के लिए हमें 10 साल के वक्फों से गुजरना पड़ता है। अब जमाने गैर मतवातर में कायनाती हवादिस को नापने के तमाम पैमाने मौजूद हैं, जिसमें माजी हाल को बगैर तरतीब के नापा जाता है। रोया यानी ख्वाब के हवास, ख्वाब या ख्याल में हम ऐसे जमाने को वापस ला सकते हैं जो हजारों साल पहले गुजर चुका है। जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसको 25 साल पहले देखा था, तो हमें गुज़िश्ता 25 साल के वाक़यात याद करने की जरूरत पेश नहीं आती। हम उस शख्स को देखने के बाद 25 साल की लिपटी हुई फिल्म को महसूस कर लेते हैं। 25 साल का वक्फा जमाने गैर मतवातर में रिकॉर्ड है। लिहाजा जब गैर मतवातर का रिकॉर्ड मुतहरिक हुआ तो हमारे जहन ने उसकी 25 साल शख्सियत को वापस लाने के लिए तमाम वक्फों को हजफ कर दिया, या बालफाजे दीगर हमारा जहन गैर मतवातर के उस दायरे में देखने के काबिल हो गया जिस दायरे में वो मस्कूरा इंसानी शख्सियत महफूज है। हजूर कलंदर बाब औलिया रहमतुल्लाह अलैह तमसीली अंदाज में फरमाते हैं कि जब हम जीने से उतरते हैं तो जीने की सीढ़ियों का नाप जो पहले से जमाने गैर मतवातर में रिकॉर्ड है हमारे कदमों की सही रहनुमाई करता है। इसलिए जीना उतरने में शौरी तौर पर सोचना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि कदम डगमगा जाते हैं तो हम गिर पड़ते हैं। ये इसलिए होता है कि किसी वजह से हमारा जहन गैर मतवातर जमाने गैर मतवातर से हट जाता है और वो रहनुमाई जो जमाने गैर मतवातर वाला जहन कर रहा होता है वो जमाने मतवातर के हाथ में आ जाती है। जो ही ये हरकत होती है हमारे कदम गलती कर जाते हैं, या तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे या हम समझेंगे कि ये सीढ़ी का नाप छोटा बड़ा है। उस अंदाजे से या तो पहले पांव रखने की कोशिश में हमारा पैर नीचे को डिप हो जाएगा या उसको ज्यादा गहरा महसूस करते हुए जोर से टकरा जाएगा तो लड़खड़ा जाएंगे। और जीने का नाप जमाने मतवातर में रिकॉर्ड नहीं होता, जमाने गैर मतवातर में रिकॉर्ड होते हैं। मेरा ख्याल है यहां रुक जाते हैं। तो माशाल्लाह ये वाजे हो गया कि जमाने मतवातर और जमाने गैर मतवातर को किस तरह से बयान किया गया और कैसे हमें उसको समझना लाजिम आता है कि हमारी सारी हरकात जमाने गैर मतवातर में रिकॉर्ड हैं। हरकात नहीं, उन हरकात से मुतालिक ख्यालात, तसव्वुरात और एहसासात रिकॉर्ड हैं। आगे उनका डिस्प्ले अमल की सूरत में होता है और वो जमाने मतवातर में होता है। ये है इसका लुबे लुभाव। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।